गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस ट्रक्स डिलीवरी व्हीकल्स कार्गो वैन्स वर्कशॉप्स ग्रोसरी स्टोर्स रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522 302-2522
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के नए एनिमल सर्विसेज बायलॉज में कई तब्दीलियां की गई हैं। आज हम जंगली हयात को खाना खिलाने पर बात करेंगे। ब्रैम्पटन में जंगली हयात को खाना खिलाना सख्ती से मना है। जानवरों को खाना फराहम ना करें और ना ही खाना बाहर छोड़ें और अपने गार्बेज बिन्स को गैराज या शेड के अंदर रखें और अपने ग्रीन बिन्स को फूड वेस्ट के लिए इस्तेमाल करें। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/animalservices पर विजिट करें।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में। रूबी ज्वेलर्स।
जी सामान्य नागरिक वेलकम बैक अगेन एंड 7:50 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और ब्यूटिफुल 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 ये किसी के लिए कह नहीं रहा हूं, टेम्परेचर बता रहा हूं आपको, लोग हवा हवा में करे अरे मेरा जिक्र करने वाले नहीं जी, नहीं नहीं मैं बात कर रहा हूं टेम्परेचर्स की। 7 degrees टेम्परेचर है, ब्यूटीफुल है नहीं है, लव एविंग खा मखा आप, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा था ओके, गलत फहमी ना रखता कि वो मैं आपके लिए कह रहा हूं ये कि भाई आप ब्यूटीफुल, वैसे भी आप ब्यूटीफुल हो नहीं सकते। एनीवे साहब, मंडे का दिन फरवरी की 26 तारीख 5:02:36 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और चलेंगे अब न्यूज की जाने पर। न्यूज का सेगमेंट आपके लिए ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे। ओपन माइक कैफे, यहां पर आपको पाकिस्तान के लजीज खाने हो तो आप पहुंच जाइए 1310-1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट, डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर आपको मिलेगा। ओपन माइक कैफे का स्पेशली बता दूं आपको कि अगर आपने 30 या 30 ज्यादा लोगों की कोई पार्टी करनी है जिसमें मुझे आप ना भूलें, उसमें जनाब आलिए 8 आइटम्स फॉर 999 के हिसाब से आपको मिलेगा। ओपन माइक कैफे 4165266800 इनका फोन नंबर है। और इसके साथ साथ अगर आपने अप्लायंसेस चाहिए हो आपको तो भाई अप्लायंसेस आपको मिलेंगे कहां पर, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पर, सुल्तान भाई यहां पर होते हैं, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए brampton appliances.com पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। चिंकुजी एंड बोवेड के कॉर्नर पर आपको मिलेगा 9054502828 इनका फोन नंबर है और अब वहां जाके आप इनसे सारी इन्फॉर्मेशन क्या खरीद लीजिए साहब। हेयर मैक्स के शिराज कहते हैं कि अगर आपने साजो आवाज का हवाला दिया तो मैं आपका हेयरिंग टेस्ट जो है एब्सोल्यूटली फ्री कर दूंगा। और साहब हेयर मैक्स के शिराज दो लोकेशन आपको सर्व करते हैं, आपके आपके घर में किसी के भी कानों में कोई खराबी दांतों में इसके मत जाइएगा, कानों में अगर कोई खराबी है, सुनाई में कम दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा आपको तो साहब आप पहुंच जाइए हेयर मैक्स के शिराज भाई के पास 4167928792 इनका फोन नंबर है। और अब लिए चलते हैं आपको कहां पर, हाँ जी हाँ जी, जो सजा मुझे मिल रही तो मैं अकेला क्यों लूं, हैं मैं अकेला ये सजा क्यों पाऊं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं मजमुई तौर पे हम तमाम इस सजा पाएं और आपको सुनना पड़ेगा, आपको कोई चॉइस नहीं है आपके पास, आपको सुनना पड़ेगा। शाजिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह, कैसी है?
वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, आप खैरियत से?
सुबह से तो अच्छा था,
हो गए कुछ ऐसे ही मामलात। जब हमारी हसीन मरियम बीबी जो है ना, वो जब चीफ मिनिस्टर बनी है ना पंजाब की, तो सरों ने उनको मुबारक वगैरह बात दी है जी, तो वो वालिद साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी गले चले बेटी को लगा के, तो बड़ी मुबारकबाद बात दी और कान में बोला, उन्होंने कहा वो वड्डे जड़े ने उन्होंने खाली तेरा हुक्म देता है कि मेरे वास्ते भी कुछ किया मेरे वास्ते कोई हुक्म देता है ये आज सुबह से इतना ट्रेंडिंग चल रहा है मुझे तो,
अच्छा
इतना कोई ये क्यूट है ना ये जो जोक था हाँ के मेरे आज सुबह उठी, मैं 7 बजे उठी हूँ तो मुझे ये मैसेजेस आ रहे हैं कजन्स के, मैं कहते हैं ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं उसने गले लगाया और उसने कहा भाई मेरे वास्ते कुछ दसिया बढ़िया ने कि तेरे वास्ते ही हुक्म है कि बस तू चीफ मिनिस्टर बनना आई स्वीट सारे। वैसे बहुत बुरी की नवाज शरीफ साहब के साथ, देखो इलेक्शन उसके नाम पे जीता और अब उसको साइडलाइन कर दिया बेचारे को, तो वो बेचारा अपना तैयार करके बैठा हुआ है कि जाएंगे वापस
जा रहे हो,
लंदन है उनका तो मुल्क, लंदन है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो वो ऐसे ही ट्रिप पे ऐसे ही घूमने फिरने आते हैं जैसे हम जाते हैं घूमने फिरने कैनेडियन।
नहीं नहीं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में रहें, क्योंकि पहले भी लोग यहाँ से फ्लाई करके जाते थे लंदन में उसे पूछने के लिए कि भाई सर जी हम ये करने जा रहे हैं
प्लान,
तो ये अब इनको चाहिए कि यहीं बैठ जाए वो, और उनको तो अब कोई वो नहीं, अब तो आजाद है ना,
आजाद है, पीसीर बन जाए लोग के पैसे, उनके
लोग जो है उनके पास आए, उनसे आके एडवाइस ले,
वेरी
एक्सपीरियंस पर्सन, जमाने से उन्होंने हुकूमत की है, वो एक्सपीरियंस पर्सन, पूरी दुनिया के शाह और शहनशाह इनको जानते हैं, तो साहब बड़े काम की चीज है, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं, सर आप यहाँ पर रहें, अगर प्रेसिडेंट नहीं है आप, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो हम आपको शहनशाह का नाम देते हैं, शाह आप हैं।
बट इन ऑल ऑनेस्टी मजर भाई, इन ऑल ऑनेस्टी जब ये थे भी, चलो चार पांच तो अच्छे काम किए ही थे इन्होंने,
पाकिस्तान में उस जमाने में काम हुआ है,
काम भी हुआ था,
रिमाइंड ऑफ हमारे जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ना, हमारे मशहूर
मामा जी ओबामा,
नहीं नहीं नहीं, जो
जॉर्ज डब्ल्यू बुश
जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे, हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है?
ट्रम्प साहब
भी बिजनेसमैन, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंड ही केम एंड ही बिल्ड्स द इकॉनमी।
अब मजे भाई सबसे तो बड़ी बात ये उसने की ना, जो सारी दुनिया में जंगें जो उसने रुकवाई थी, ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। देखें अगर सारी दुनिया शांति में रहेगी, इससे बड़ी और क्या बात है मजे भाई। इस वक्त आप देखें
100%.
हर जगह लड़ाई, हूती इन पे अटैक कर रहे हैं, ये हूतियों पे अटैक कर रहे हैं, ये हिजबुल्ला पे कर रहे हैं, हिजबुल्ला इनके ऊपर कर रहा है, उनकी तो नस्ल ही खत्म कर दी है पैलेस्टीनियंस की, फिर जी और भी सारी जगहों पे, और बहुत सारी जगहों पे पंगे हैं, है ना। तो इसने जो बंदे ने सबसे अच्छा काम ये किया, ना सिर्फ लड़ाइयां उसने खत्म कराई, बल्कि उसने कहा जी सारे दोस्त बन के रहो,
दोस्त बन के रहो, हमें जरूरत ही नहीं है, अपनी इकोनॉमी को खुश रखो,
अपनी इकोनॉमी ठीक करो, मैंने अपने भी पैसे किसी को नहीं देने अमरीका
तो
ने,
मैं कहता हूँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपने जो हुकूमत पहली जो हुकूमत आई थी उस वक्त उन्होंने यही किया था, ही वॉज अ बिजनेस मैन, सक्सेसफुल बिजनेस मैन, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि साहब अब हमको अपनी इकोनॉमी बनानी है बस।
और मजे भाई यहाँ पे बहुत बड़ी हमारे इधर 770 पे हम कहते हैं ना, हम बहुत सारे राज फाज करते हैं, पीछे की स्टोरियां लाते हैं। अगर आपको याद होगा कि मैं एक दफा इंटरव्यू ले रही थी उनका, अफसार आलम साहब का
जी,
आपको पता है हमारे इस रेडियो पे ही उसने कहा जी ये जो बहुत बड़ा नाम है मनमोहन सिंह साहब का, सारी दुनिया उनको बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट समझती है, मनमोहन सिंह साहब ने अकॉर्डिंग टू अफसार आलम के नवाज शरीफ साहब का 5-year plan जो था उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है।
अच्छा,
हाँ हाँ, तो ये अफसार आलम साहब ने ये कहा, तो आप देखें कि फिर इकोनॉमी का जो उनका जो प्लान था कुछ तो था उसमें, वही जो आप वाली बात है कि जो पहला उनका प्लान था, ठीक है, पहला प्लान था, और उस चीज को मानती भी थी IMF के, भाई पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा था, और हमने तो इधर कहा था कि
कर रहा था, सिर्फ IMF की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था।
और मजीद भाई सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे वो नवाज शरीफ की है, चाहे वो इमरान खान की है, इररिस्पेक्टिव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी टर्म से पहले नहीं हटाना।
और इमरान खान साहब भी जब हुकूमत करने आए, 3-3.5 साल किया, उस वक्त भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी,
हालांकि उस जमाने में पेंडेमिक था मजद भाई,
मगर उस वक्त जो है कई कई मालिक हैं जिनको ये रास नहीं आया,
ये बंदा आ गया, ये पेंडेमिक में से कैसे निकल गए इतने आराम से, है ना।
इनका पेंडेमिक का तो अलग ही प्लान था कि आधा पाकिस्तान तो
बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे ये गरीब मुल्कों को ना, हम
सबसे ज्यादा वो
कामयाब सबसे ज्यादा था, तो अब वो तकलीफ हो गया। अभी आज हम एक खबर सुनाएंगे और उसमें बताएंगे कि पाकिस्तान ने 2022 में यानी आज से दो साल पहले क्या सोचा था, आज वही काम दूसरे मुल्क कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि सारी दुनिया को तकलीफ हो गई कि कहीं पाकिस्तान आगे ना निकल जाए, तो आज हम सुनाएंगे उसकी बात। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू मस्जिद इब्राहिम। मस्जिद इब्राहिम वाले अपना जो है वो फंड रेजर यहां पे हमारे साथ कर रहे हैं इस फ्राइडे को, तो आप प्लीज हमारे साथ जरूर जुड़ें। और वो जो है वहां पे आपको पता ही है कि बहुत सारा एक जो है मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी बहुत सारी हेल्प भी करते हैं। तो ये फर्स्ट मार्च फ्राइडे को 4 बजे हम टेलीथॉन शुरू करेंगे, तो आप प्लीज हमारे साथ जो भी आप रमजान के महीने के लिए अपने कुछ ज़कात खैरात निकालना चाहते हैं तो आप प्लीज उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है मस्जिद इब्राहिम के लिए भी करें। कनाडा की लार्जेस्ट मस्जिद है और इसमें बहुत सारी, अगर आप जाएंगे वहां पे बहुत सारे जो हैं वो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तकरीबन 600 के करीब स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो इनको आप जरूर प्लीज करें, हम जो है इनकी हेल्प करें। और जनाब टैप टैप सेंड, ये कहते हैं जी थोड़ी बैंक जो है पाकिस्तान में उनमें हम बहुत इजीली पैसे भेजते हैं, भेज सकते हैं, यानी कि आप भेज सकते हैं, इनके जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लें अपने एंड्रॉयड और एप्पल फोन के ऊपर और फिर बहुत ही कन्वीनियंटली आप इनको जो है पैसे भेज सकते हैं 0 ट्रांसफर फी पे, कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं है उस पर लगती है। तो आप या फिर विजिट कर लें ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए tap tap send.com। और जनाब ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज डेज फैजल चड्डा साहब होते हैं, आप जरूर इनके पास जाएं। दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक है 4141 डिक्सी रोड में से सागा में, दूसरा है ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट। अगर आपको फोन करना है और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 905-226-2294 पे। अच्छा जी, अच्छा जनाब जो सबसे पहली खबर है वो तो हमारे टूडो साहब की है। टूडो साहब जो हैं वो पोलैंड में पहुंचे हुए हैं और वहां पे आज उन्होंने, लोगों ने फिर से पूछा उनसे टूडो साहब से कि टूडो साहब आपका जो नेटो का ये टारगेट है कि हर जो कंट्री जो पार्ट ऑफ नेटो है उसमें जीडीपी का 2% जो है डिफेंस के ऊपर खर्च होना चाहिए, तो आप तो खाली 1.3% ही कर रहे हो। तो उन्होंने बड़ा डिफेंड किया आज कैनेडा को, उन्होंने कहा कि नहीं हम बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं, ठीक है हमको कुछ और भी ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन जो आपको पता ही है कि कनाडा ट्रेनिंग्स देता है बहुत सारे कंट्रीज को, तो वो कहते हैं जी दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो ये एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी यहां पे, इनके जो पोलिश प्राइम मिनिस्टर इनके जो काउंटर पार्ट थे डोनाल्ड टस्क उनके साथ ये थे, और टस्क साहब ने तो आज बहुत सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है या यूरोपियन यूनियन जो है उसको सोने की जरूरत नहीं है, और खासतौर पर नेटो को, इनको ज्यादा एम्यूनिशन और वेपन्स बनाने की जरूरत है ताकि यूक्रेन को दी जा सके, ताकि यूक्रेन जो है रशियन अग्रेशन के खिलाफ जो है फाइट कर सके। और मुझे समझ नहीं आ रही है, टर्क साहब ने कहा कि जी ये जो रिच यूरोपियन नेशंस हैं इनके पास कैसे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये रशिया को काउंटर कर सकता है। और उसके बाद जो है फिर इनसे जब क्वेश्चन किया गया टूडो साहब से कि अपने जीडीपी का 2% करें, क्योंकि इस वक्त कनाडा जो है 1.3% स्पेंड करता है जीडीपी का, तो उसके ऊपर टर्क साहब ने कहा कि पोलैंड सबसे ज्यादा स्पेंड करता है अपने जीडीपी का, 3.9% ये अपने जीडीपी का डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये आज ज्यादातर बात तो इन दोनों के बीच में जो है वो यूक्रेन के मुद्दे पे ही रही, लेकिन जाहिर है कि जो दुनिया की बाकी की हालत है उसके ऊपर भी इनकी बातचीत हुई। आज से जनाब एक जो हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि पब्लिक ट्रांजिट फेयर सिस्टम जो है वो ऑन्टेरियो के अंदर लगा रहा है, कि यानी कि आप जिधर भी ट्रेवल कर रहे हैं एक दफा आपने पे करना है जो हाईएस्ट आपका जो फेयर होगा, और उसके बाद जो है आप ट्रांसफर कर सकेंगे अपने ये जो आपकी जो फी होगी जिसको के कहा जा रहा है वन फेयर इनिशिएटिव। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बिटवीन गो ट्रांजिट, टीटीसी, ब्रैम्पटन ट्रांजिट, ड्यूरम ट्रांजिट, माय वे, यॉर्क रीजनल ट्रांजिट के बीच में, इसमें प्रीमियर जो फोर्ड साहब हैं उन्होंने आज कहा कि जी हम लोगों को बहुत सारे ट्रांजिट के ऑप्शन देना चाहते हैं ताकि वो बहुत कन्वीनियंटली इनको यूज कर सकें और आपका जो फेयर है उसको भी टीटीसी जो है ड्यूप्लीकेट ना करे। तो अगर आपका 2 से 3 घंटे का सफर है तो उसके बीच में जो हाईएस्ट उस लिंक के अंदर जो हाईएस्ट फेयर होगा वो आपने पे करना है, और उसके बाद जो है फिर आपका काफी फेयर जो है नीचे आ जाएगा। तो इसमें उन्होंने बताया जी कि राइडर्स जो हैं तकरीबन $1,600 जो हैं पर ईयर अपने इन फेयर्स के ऊपर जो है वो बचाएंगे,
स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और सिंगल है और सीनियर्स हैं उन तमाम के लिए एक्सीलेंट
वेरी वेरी
एक्सीलेंट प्रोग्राम
बहुत जबरदस्त प्रीमियर साहब का, ऑन्टेरियो के प्रीमियर जो है डकफोर्ड साहब का जबरदस्त है। आज जनाब 3000 के करीब जो यॉर्क यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं वो स्ट्राइक के ऊपर हैं, और ये जो यूनियन है क्यूब लोकल 3909 के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इसने इन्होंने आज स्ट्राइक की कॉल दी और इन्होंने कहा जी कि इसके अंदर फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ और ग्रेजुएट्स एंड जो रिसर्च असिस्टेंट्स एंड पार्ट टाइम लाइब्रेरियंस जो हैं वो सारे स्ट्राइक आज से फरवरी 26 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बातचीत चल रही थी वीकेंड के ऊपर वो उसमें कोई भी डील ब्रोकर नहीं की जा सकी। इन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि हमारे जो पेज हैं उनको इंक्रीज किया जाए और जो दूसरी हमारी प्रायोरिटीज हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हुए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा जी कि हमने इनको एक प्रपोजल दिया था पिछले 8 महीने से जो हमारी बातचीत चल रही है उसमें हमने उनको दिया था, लेकिन इन्होंने उस पर गौर नहीं किया। यूनियन कहती है जी कि कोई इन्होंने हमारे साथ कोई भी चीज जो है वो बात नहीं की है। अब कौन सच बोल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। यूनियन कहती है दे डिडंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। यूनिवर्सिटी कहती है कि वी ब्रॉट यू नो क्वाइट अ फ्यू थिंग्स ऑन द टेबल, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो परवाह नहीं की है। तो अब जो बच्चे हैं जाहिर है कि वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्लासेस जो है वो तो अब नहीं होंगी। अब पता नहीं ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये ईयर एंड है। अभी जो है फरवरी चल रहा है, अप्रैल के अंदर इनका सेशंस जो है इनके खत्म होने हैं, तो ये कैसे चलेगा। बहरहाल अब अलग करें इनकी बातचीत हो जाए ताकि बच्चों का ये जो क्रूशल साल है ये खराब ना हो। तकरीबन 80,000 के करीब जो वोक्सवैगन और ऑडी कार्स हैं उनको कनाडा के अंदर रिकॉल किया गया है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि उसके अंदर फायर जो है उसका रिस्क है, वहां पे उसके अंदर जो जेट पंप लगा हुआ है वो इनसाइड फ्यूल टैंक उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वो लीक कर सकता है और एमिशन सिस्टम में फ्रॉम चारकोल कैनिस्टर्स और उसकी वजह से जो है आग लग सकती है। अभी तक जो है वैसे कोई क्रैश या इंजरी या फायर की कोई केस आई तो नहीं है सामने, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जी एज अ प्रिकॉशन हम इसको कर रहे हैं। अफेक्टेड व्हीकल्स जो हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव्स हैं 2015-20 की ऑडी A3 सेडान, 2019-20 वोक्सवैगन जेटा GLI, 2015-2019 गोल्फ स्पोर्ट वैगन। तो ये जो है इन सबको वापस बुलाया गया है और जो इनके ओनर्स हैं उनको अब जो है बताया जाएगा, डीलर्स की तरफ से उनको जो जाएंगे। अब यूके की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने अपना एक लॉ मेकर जो है ली एंडरसन उसको सस्पेंड किया है, क्योंकि उन्होंने जो लंदन के मेयर हैं सादिक खान उनके बारे में कहा जी कि इसको तो जो इस्लामिस्ट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं। आपको पता ही है कि सादिक खान जो है पहला मुसलमान और पहला पाकिस्तानी मेयर जो था वो लंदन का बना था, और इनका जो ताल्लुक है जो इंग्लैंड की ऑपोजिशन लेबर पार्टी है उससे इनका ताल्लुक है, लेकिन इनको काफी ज्यादा जो है वहां पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि एक तो ये सही तरह से पुलिसिंग हैंडल नहीं कर रहे हैं और लंदन के अंदर बहुत सारे क्राइम्स जो है इंक्रीज कर गए हैं, और उसके अलावा ये जो प्रो पैलेस्टीनियन मार्चेस होते हैं इनको ये नहीं रोकते हैं। ये जो प्रो इसराइली वॉइसेज हैं यूके के अंदर इंक्लूडिंग एंडरसन वो भी कहती हैं जी कि ये जो प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट्स लंदन के अंदर हैं ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, और ये जो है हालांकि आपको पता ही है कि इंग्लैंड के अंदर लोग काफी सारे सपोर्ट करते हैं कि इसराइल का ये जो अटैक है गाजा के ऊपर बिल्कुल गलत है और इसको अब रुकना चाहिए। एंडरसन जो है उन्होंने टीवी के चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस्लामिस्ट जो है वो यूके को कंट्रोल करते हैं, लेकिन खान को वो जरूर करते हैं और उसकी वजह से लंदन को जरूर ये करते हैं, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि लंदन के ऊपर ज्यादा जोर है, जोर ज्यादा इनका जो है वो खान के ऊपर ही है। अब जो ऑपोजिशन है जनाब वो बड़ा भड़क गई, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत किस्म के कॉमेंट्स हैं। ऑपोजिशन ने कहा जी कि ये बड़े ही रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक कॉमेंट्स हैं और बिल्कुल ही अब्सर्ड किस्म के हैं, और ऐसी इस तरह की बात जो है इंग्लैंड के अंदर नहीं होनी चाहिए है। जर्मनी में तो जनाब हम अब आपको पिछले 3-4 महीने से ही बता रहे हैं कोई ना कोई स्ट्राइक वहां चलती रहती है। आज भी अब आज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स जो हैं जर्मनी में वो और क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो हैं वो अब स्ट्राइक कर रहे हैं, और इनका जो नारा है जो इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखा है उसका मतलब है वी आर ड्राइविंग टुगेदर, यानी कि ये दोनों जो हैं हाथ जोड़ के आगे चल रहे हैं। ये जो है वन ऑफ द यूरोप्स लार्जेस्ट ट्रेड यूनियंस जो है वर्डी यहां पे जर्मनी के अंदर, इन्होंने यूथ लेड फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये जो क्लाइमेट वाले हैं इनके साथ हाथ जोड़ा है, और ये कह रहे हैं जी कि हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो वो गंदा धुआं या खराब जो उसके अंदर ऑयल्स या चीजें यूज होती हैं वो डायरेक्टली क्लाइमेट को खराब करती हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ट्रेन ड्राइवर्स जो थे उन्होंने भी काफी जो है स्ट्राइक की थी, और उससे जर्मन इकोनॉमी को तकरीबन $1 बिलियन के करीब जो है वो नुकसान उठाने पड़े थे। अब ये जो प्रोटेस्ट हैं ये जर्मनी के तकरीबन तमाम ही स्टेट्स के अंदर हैं एक्सेप्ट फॉर बवेरिया, सिर्फ बवेरिया में नहीं है और हर जो स्टेट है उसके अंदर तकरीबन 90,000 ये जो हैं ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं इन 130 म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हैं वो मोर्चे उन्होंने ये निकाले हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि हमारी पे बढ़ाओ, सोशल जस्टिस दो और हमारी वर्किंग कंडीशंस जो हैं उनको बेहतर करो, वरना हम जो है ये मोर्चा चलाते रहेंगे। हंगरी की पार्लियामेंट जो है जी उसने आज फाइनली अप्रूव कर दिया है स्वीडन का नेटो के अंदर मेंबरशिप। पार्लियामेंट के अंदर जो वोटिंग हो रही थी उसमें 188 लोगों ने इसको सपोर्ट किया, 6 जो थे वो इसके अगेंस्ट थे इन पार्लियामेंट ऑफ 199 मेंबर्स, और ये जो है ज्यादा इसको डोमिनेट करते हैं जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं फिट्स पार्टी की जो कि प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन की है। फ्राइडे को जो था अभी ये जो गुजरा है उसमें स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ऑल्फ क्रिस्टेंसन जो हैं वो बुडापेस्ट आए हुए थे जो कैपिटल है अमरीका, वहां पे उसमें उनकी मुलाकातें जो हैं विक्टर ऑर्बन साहब के साथ भी हुई, और उसके बाद फिर बातचीत के बाद ऑर्बन साहब ने कहा कि ये जो हमारी बहुत लंबी लड़ाई चल रही है स्वीडन के साथ पिछले 19 मंथ से, जिससे कि वो बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं इनको एंटर होने देंगे नेटो में, क्योंकि आपको पता ही है हमने बड़ी दफा ये भी बात बताई है कि नेटो का असूल है कि अगर एक भी कोई जो मेंबर स्टेट है वो कहेगी कि कोई हमारा हिस्सा नहीं बन सकते तो वो नहीं बन सकते। बहरहाल जी इन्होंने आज उसकी हामी भर ली है, और उससे इससे पहले ये जो आज इन्होंने हामी भरी है उससे पहले स्वीडन ने प्रॉमिस किया है हंगरी को कि वो इनको 4 स्वीडिश मेड ग्रिपन फाइटर जेट्स देंगे, क्योंकि हंगरी की जो एयरफोर्स है उसके पास 14 जो है वो है ये जेट्स, तो उन्होंने कहा जी 4 और हम आपको और देंगे। इसके अलावा साब, आपको पता ही है जो साब इनकी कंपनी है वो वॉर हेड्स जो है वो वॉर प्लेन्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसने भी कहा है कि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर जो है हंगरी के अंदर खोलेंगे। तो ये सारी डील्स होने के बाद जो है आज फिर इन्होंने हंगरी ने इनको अप्रूव की है इनकी नेटो की बिट जो है। इसराइली ऑफिशियल्स जो हैं जी वो आपको पता ही है लास्ट वीक कतर को बेतहाशा जो है वो करते रहे हैं, एतराज उस पर करते रहे हैं। आज ये कतर में पहुंचे हुए हैं टू टॉक अबाउट गाजा ट्रूस एंड हॉस्टेज रिलीज। इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने कहा जी कि अगर आपने ये मिलिट्री अगर आपने ये डील ना बनाई तो ये जो मिलिट्री ऑपरेशन रफा के अंदर है वो हम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये मत समझना कि इस डील के बाद गाजा ट्रूस के बाद हम ये जो है मिलिट्री ऑपरेशन रफा में रोक देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा उसको डिले जरूर कर देंगे। तो इसलिए जो है इसके ऊपर आप सोच लें कि आपको अब आगे कैसे चलना है। इसके अलावा जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं वो भी अब होस्ट करेंगे, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी जो हैं वो अब जाएंगे पेरिस में भी लेटर दिस वीक टू डिस्कस अगेन गाजा वॉर, और ये जो है 15 ईयर्स में कतर के किसी भी हेड ऑफ द स्टेट का पहला विजिट जो है वहां पे होगा। इसके साथ साथ कतर के अंदर न सिर्फ जो इजरायली डेलीगेशन बल्कि जो हमास के पॉलिटिकल चीफ हैं इस्माइल हानिया वो भी दोहा में पहुंचे हुए थे, और कतर ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं जब तक कि आपकी इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनेगी जिसमें कि 1967 वाले बॉर्डर्स होंगे विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, तो हम उसके लिए काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो है आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जो है सऊदी अरेबिया ने बहुत ज्यादा कंडेम किया मुस्लिम कंट्रीज को, उन्होंने कहा कि इतना जुल्म हो रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर और सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी मुस्लिम स्टेट्स जो हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा जो है उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को खासतौर पर सऊदी अरेबिया ने कहा जी कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते हैं ह्यूमन राइट्स के एक ही स्टैंडर्ड होने चाहिए, और बहुत ज्यादा वहां पे बंदे जो हैं मार दिए हैं इसराइल ने। और जनाब ये खबर जो है आपको काफी हैरान करेगी, ये कतर के जो है जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG जो होती है उससे रिलेटेड है। अब आप देखें आज कतर ने ये अनाउंस किया है कि ये एक्सपैंड कर रहे हैं अपना आउटपुट फ्रॉम वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड और इसकी कैपेसिटी जो है 142 मिलियन टन्स पर एनम ये कर देंगे बिफोर 2030। इसका जो फील्ड का नाम है वो है नॉर्थ फील्ड वेस्ट और वो कहते हैं जी कि इसके अंदर हम 16 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ईयर जो है वो ऐड करेंगे। कतर के एनर्जी मिनिस्टर साद शरीदा अलकाबी जो हैं उन्होंने आज इसको अनाउंस किया है, वो हेड करते हैं स्टेट ओन्ड कतर एनर्जी को भी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कर रहे थे, इससे पहले भी उन्होंने इसकी डिटेल जो थी कल संडे के दिन भी की थी। उन्होंने कहा जी कि ये जो ह्यूज गैस क्वांटिटीज हैं तकरीबन 240 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, इससे जो गैस के रिजर्व्स हैं कतर के अंदर वो इंक्रीज करेंगे और हम इसकी और भी ज्यादा इसको सप्लाई इसकी करेंगे 1760 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पे। इससे जो कतर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 142 मिलियन टन्स हो जाएगी इस जो 10 साल के बाद। और वो कहते हैं जी कि ये 85% राइज आएगा फ्रॉम करंट जो लेवल्स हैं। कतर जो है दुनिया का टॉप एलएनजी प्रोड्यूसर है आफ्टर यूएसए ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। और ये जो खबर है जनाब आज हम बात इसकी कर रहे हैं 2024 में। अगर आपको याद हो कि 2022 में सिमिलर डील जो है इमरान खान साहब करने के लिए गए थे रशिया के अंदर, जब वो वापस आए तो उनको हटा दिया गया। ये बिल्कुल ऐसी ही डील थी जो पाकिस्तान करना चाहता था, जिसमें कि उसने रशिया को कहा था कि आप जो है हमें ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है इसको दें, क्योंकि रशिया के पास भी बेतहाशा, जैसे मैंने आपको बताया है कि यूएसए ऑस्ट्रेलिया और रशिया के पास बेतहाशा ये नेचुरल गैस है और फिर कतर जो है नंबर 4 पे है। तो वही डील जो है इमरान खान साहब बनाने गए थे कि आप ये अपनी चीप जो एलएनजी है ये पाकिस्तान को दें, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड्स हैं। और अगर ये डील हो जाती रशिया के साथ तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जाहिर है कि पेट्रोल से हर चीज जुड़ी होती है, अगर ये डील हो जाती तो फिर चीजें जो हैं वो बहुत सस्ती भी रहती हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ती हो जाती और ये जो पाइपलाइन भी इनके बीच में बसती उससे ये दूसरे जो इलाके के जो कंट्रीज थे जैसे कि अफगानिस्तान था, जैसे कि अगर इंडिया भी लेना चाहता वो भी, नेपाल, श्रीलंका, तो ये सबको जो है पाकिस्तान दे सकता था। लेकिन जाहिर है कि जैसे ही ये सारी डील्स बना के इमरान खान साहब वापस आए हैं तो उनके खिलाफ जो है एक नो कॉन्फिडेंस मूव लाया गया और उनको हटा दिया गया। बस वही होता है कि जो भी कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है और फिर सारे का सारा धरे का धरा रह जाता है काम और वो सारा कुछ डिरेल हो जाता है। बल्कि तो काफी बुरा लग रहा था सारी दुनिया को कि पेंडेमिक से भी निकल आया पाकिस्तान, तरक्की की राह पे भी चल रहा है, चीजें भी बेटर हो रही हैं, तो ये कैसे बेटर हो रही हैं? तो अब इसको जाहिर है कि डेवस्टेट करेंगे। लेकिन जाहिर है थैंक्स टू अवर ओन अपॉर्चुनिस्ट जो कि इन चीजों का फायदा उठाते हैं और फिर उसको बर्बाद करते हैं। और अभी भी अगर समझ ना इनको आई, अकल के नाखन ना लिए इन्होंने, तो बस फिर इनका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। 1971 में इन्हीं चीजों की वजह से अपने मुल्क का एक हिस्सा जो है ये गंवा बैठे हैं। 1971 में भी आपको पता है 167 सीट्स जो है वो जीती थी मुजीबुर रहमान ने, एज अ रिजल्ट उसने गवर्नमेंट बनानी थी। भुट्टो साहब ने तो सिर्फ 80 सीट्स जीती थी, लेकिन भुट्टो साहब कूद कूद के जाते थे जी वहां पे उनसे बात करने के लिए, और चूंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी जो भुट्टो साहब को कहती कि भाईजान जरा चैन से बैठो, आप अपोजिशन में बैठो, आप हारे हो इलेक्शन, आप जीते नहीं हो, जीता मुजीबुर रहमान है। और नैरेटिव क्या क्रिएट किया गया, बंगाली जो हैं वो बड़े जो हैं वो गद्दार हैं और मुजीबुर रहमान गद्दार है। भई एक आदमी इलेक्शन में जीता उसमें गद्दारी क्या, और गद्दार बंगाली कैसे गद्दार थे? अगर आपको हिस्ट्री पता हो कि मुस्लिम लीग तो बनाई ही बंगालियों ने थी, उसको फंड भी बंगाली नवाब करते रहे हैं, तो मुस्लिम लीग चलती रही है जिसने कि पाकिस्तान बनाया, तो गद्दार अब कौन है? फिर अब आप खुद ही सोचें और देखें और समझें ऐसे। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नानन कबोब। नानन कबोब की आपको पता है इनकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बड़ा जबरदस्त इनका जो इंटीरियर होता है, आपको खाना वहां पे खा के बैठ के बड़ा मजा आता है। तो इनकी जो ये अब नई लोकेशन है जहां पे कि ये कहते हैं जी वी ऑफर मॉडर्न अफगान किचन की तरह जो है, यानी कि सामने आपके वो बना रहे होते हैं ताजा बिल्कुल चीजें, तो वहां पे आप जाके भी एंजॉय का मजा ले सकते हैं। नानन कबोब की ये जो लोकेशन है इट इज लोकेटेड एट 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट F3 मिसिसागा। इनका नंबर है 9052829797। इसके अलावा यूनिक साइंस विक्रमजीत होते हैं यहां पे और कहते हैं जी आपके घर का जो एक्सटीरियर है, जो फ्रंट है उसका फसाद, उसका हम बड़ा खूबसूरत बना देते हैं, उसके ऊपर अगर आपको ये साइन बड़ा रोशन सा लगवाना चाहते हैं तो आप विक्रमजीत जी को फोन करें। इनका नंबर है 6475274482। अच्छा जनाब, आज जो अब ये जबरदस्ती की गवर्नमेंट्स बनाई जा रही हैं, तो इसके अंदर जाहिर है कि सेनेट जो है उसके अंदर भी अब जो है वो यानी कि उसको भी जरा सेटअप किया जा रहा है, लेकिन ये जो सेनेट है उसमें ज्यादातर पीएमएलएन, पीपीपी और पीटीआई जो है इनकी डोमिनेंस रहेगी। और आपको पता ही है कि पीएमएलएन और पीपीपी ने तो हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर अब बहुत सारे सेनेटर्स जो हैं ये रिटायर भी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टर्म होती है 6 साल की होती है सेनेटर्स की, लेकिन एवरी 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों की जो टर्म्स खत्म होती जाती हैं, तो फिर वो 3-3 साल में लोग बदलते जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसके होते हुए पीपीपी और पीएमएलएन के बहुत सारे जो सेनेटर्स हैं वो एक तो उनकी टर्म पूरी हो जाएगी, उनको छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि जो पीटीआई के लीगल मसले चल रहे हैं, अगर वो लीगल मसले हल हो गए तो फिर पीटीआई जो है सेनेट को करेगी, डोमिनेट करेगी। इस वक्त भी अगर टर्म वाइज देखा जाए तो पीएमएलएन जो है उसके इस वक्त 16 सेनेटर्स हैं, अलबत्ता 3 महीने में वो बिल्कुल वो 11 रह जाएंगे, क्योंकि उनके जो हैं 5 जो लोग हैं वो चले जाएंगे। पीपीपी जो है उसके पास इस वक्त 21 सेनेटर्स हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 12 रह जाएंगे, और पीटीआई जो है वो जिसने के आई थी फॉर द फर्स्ट टाइम सेनेट के अंदर 2015 में, उसके पास अभी 24 हैं, लेकिन 7 उसमें से चले जाएंगे, फिर भी 17 सेनेटर्स जो हैं वो पीटीआई के रहेंगे। तो यानी कि सेनेट को डोमिनेट करेगी पीटीआई, क्योंकि पीएमएलएन के जैसे मैंने अभी आपको बताया 11 सेनेटर्स, पीपीपी के 12 और पीटीआई के 17, और अगर इनके जो लीगल वोज हैं ये खत्म हो गए तो फिर इनके और भी ज्यादा लोग जो हैं वो आ जाएंगे। ये ऑलरेडी जो है पीटीआई डोमिनेट कर रही है केपी के अंदर, और आपको पता ही है कि जो लोग हैं यहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं 4 प्रोविंसेस से होते हैं, तकरीबन 100 के करीब सीट्स होती हैं सेनेट के अंदर, 23 ईच जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनसे लोग आते हैं, 4 इस्लामाबाद से आते हैं, 4 रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन से आते हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स आते हैं, 1 माइनॉरिटीज का बंदा आता है, लेकिन अब इस वक्त जो है 96 जो है सीट्स हुआ करेंगी सेनेट के अंदर, क्योंकि पहले जो 4 फाटा की सीट्स होती थी वो अब दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ केपी। उसकी वजह यह है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी उसकी वजह से फाटा को मर्ज कर दिया था केपी में, तो सेनेट में फिर अब देखने वाला है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है जी उसने कहा है एफआईए और नैब को कि फरवरी 29 को जो भी कोई उनके रिजर्वेशंस हैं इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी उनके जो साइफर और तोशाखाना केसेस में जो भी कोई रेफरेंसेस जो आए हुए हैं उस सिलसिले में कोई सबूत हैं तो वो सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर साइफर केस और तोशाखाना के ऊपर इमरान खान, उनकी वाइफ और शाह महमूद कुरैशी ने प्लीज डाले थे कि भाई आप हम चैलेंज कर रहे हैं ये जो हमें सेंटेंस इसके अंदर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 मेंबर डिवीजन बेंच जिसमें के चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब थे, वो ये आज हियरिंग सुन रहे थे खान साहब की और कुरैशी साहब और उनकी वाइफ की जो प्लीज आई हुई थी उनके ऊपर। उन्होंने आज नैब को भी कहा है कि खान साहब और बुशरा बीबी की जो 14 साल की तोशाखाना के अंदर हैं या कि बाकी साइफर केस के अंदर जो 10 साल की हैं उसके सिलसिले में आप सारी आके हमको सबूत और जो भी वजाहतें आपने देनी है करें, क्योंकि हम इनकी जो है जाहिर है कि वो प्ली के ऊपर हियरिंग कर रहे हैं। पीटीआई के जो बैरिस्टर हैं अली जफर साहब, उन्होंने कहा जी कि ये बेतहाशा अनयूजुअल अक्रेंसेज हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपके कोई भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी आप भी जो है सारे अपने सबूत लेकर आएं और फिर हम जो है ये हियरिंग कंटिन्यू करेंगे। पीटीआई जो है जी उसने फिर से एक दफा बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस दिखाई हैं कि ये जो पोल के अंदर रिगिंग हुई थी, इसके ऊपर बात करते हुए हलीम आदिल शेख जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कराची के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो थी उसने जीती थी 183 नेशनल सीट्स, नेशनल असेंबली की सीट्स इन अकॉर्डेंस विद फॉर्म 45 जो इनके पास हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग जो हैं वो ओवरवेलमिंगली बाहर आए थे और उन्होंने हमको वोट दिया था, इमरान खान को उन्होंने वोट दिया था, तो हम जो है ये आरओस जिन किसी ने भी ये चेंज किए हैं सारे रिजल्ट्स उनके खिलाफ हम जो है पनिशमेंट्स मांगेंगे। खुर्रम शेर जमान जो है उन्होंने भी इनको एंडोर्स किया, उन्होंने कहा जी कि हम अपनी लीगल बैटल जारी रखेंगे, और इसके अलावा उन्होंने आज अनाउंस किया कि हम कराची के अंदर एक हंगर स्ट्राइक करेंगे इस सिलसिले में। इसके साथ साथ नेशनल असेंबली के जो ऑनगोइंग आउटगोइंग जो स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने कहा जी कि फरवरी 29 को मैं सेनेट का जो है सेशन बुलाऊंगा। इसके ऊपर अगेन बैरिस्टर जो जफर है उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नंबर 1 एक तो यह आउटगोइंग जो है स्पीकर हैं, नंबर 2 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास तो पावर्स ही नहीं है कि ये सेनेट का सेशन जो है इस तरह से बुला सकते हैं। अभी भी सदर जो है मुल्क के वो आरिफ अलवी साहब हैं, आरिफ अलवी साहब जो हैं सिर्फ वही बुला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं जिनका कि अभी तक फायदा जिसका कि अभी तक फैसला नहीं किया गया है उसका भी करें, और ये जिस वक्त तक उसका फैसला नहीं आएगा उस सूरत में भी राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं कन्वीन नहीं कर सकते हैं सेनेट का सेशन। पीटीआई के शुएब शाहीन जो हैं उन्होंने आज वेलकम किया जमात इस्लामी के स्टैंड को, क्योंकि उन्होंने भी जमात इस्लामी ने भी कहा कि ये जो बहुत मैस्ड रिगिंग हुई है पोल्स के अंदर इसमें हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और शुएब शाहीन ने भी कहा जी कि मुझे 99% ऑफ जो पोलिंग स्टेशन से इस्लामाबाद में उसमें से मैं जीता था, और मैं तीनों जो इस्लामाबाद की राइडिंग्स थी उसमें से मैं जीत रहा था और मुझे जानबूझ के हराया गया था। तो मतलब ये वही है बस, वो रिगिंग के जो अब किस्से हैं ये चलते ही चले जा रहे हैं। और अगर वीकेंड के ऊपर आप देख रहे थे कि यूएस कांग्रेस में भी काफी धुआंधार इसके ऊपर जो है बहस हो रही थी और लोगों ने काफी क्वेश्चन किया मैथ्यू मिलर साहब को भी, जो उन्होंने कहा था कि जी जो है यहां पे बड़ी अच्छी कंपेटिटिव जो रहा मुकाबला पाकिस्तान में, तो लोगों ने पूछा कि भाई कंपेटिटिव से आपका क्या मतलब है। और इसके अलावा दूसरे जो लोग थे कांग्रेस में उन्होंने भी एतराज उठाए हैं कि भाई ये जो इतनी मैसिव रिगिंग की खबरें आ रही हैं तो इसके ऊपर यूएस की क्या टिप्पणी है, क्या बोल रहा है इसके बारे में, तो काफी वहां पे भी बातचीत जो है चल रही है। पीएमएलएन की जो मरियम नवाज है, आपको मैंने अभी जैसे बताया ही है कि वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनी है, उनको 220 वोट्स मिले थे और इनके राइवल जो थे राणा आफ्ताब अहमद खान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो जो थे वो हार गए इनसे। तो यहां पे इनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब, इनके अंकल शहबाज शरीफ साहब ये आए हुए थे और ओथ जो है इनसे ली गई है गवर्नर हाउस के अंदर। अपनी यहां पे स्पीच जो इन्होंने डेढ़ घंटे की आज की है उसमें आने से पहले ये जो है अपनी वालदा की कबर जो है कुलसूम बेगम उनकी कबर पे वहां पे गई थी। जब ये आई तो ऑपोजिशन जो थी उसने बॉयकॉट किया ये सारे का सारा सेशन, लेकिन इस मौके पर बात करते हुए मरियम साहबा ने कहा कि मैं चाहती थी कि जो ऑपोजिशन है वो इस पोलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने, और अगर वो हाउस के अंदर प्रेजेंट रहते और प्रोटेस्ट करते मेरी स्पीच के बीच में तो मुझे बड़ी खुशी होती, और मेरा मैसेज ऑपोजिशन को यही है कि मेरे चेंबर के और मेरे दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। ये बिल्कुल नेचुरल है कि जब लोग जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता है तो उनके दिल में बड़ी हेट्रेड होती है, मेरे से ज्यादा इस बात को कौन ज्यादा समझ सकता है, लेकिन मेरे दिल में ना किसी के खिलाफ हेट्रेड है और ना ही मैं किसी से रिवेंज लूंगी, और मेरी जीत जो है वो ये टेस्टमेंट है कि पाकिस्तान की कोई औरत या बेटी जो है वो अपनी ड्रीम जो है वो देख सकती है। और यू कैन, उनका कहने का मतलब था यू कैन ड्रीम बिग, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। इसके साथ साथ पीपीपी के जो लीडर हैं सैयद मुराद अली शाह वो इलेक्ट हुए हैं जी सिंध के चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी कि हमें इसलिए हम जीते हैं सिंध में कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। भाईजान जीते तो आप थे ही नहीं, अब पता नहीं कैसे आप बोल रहे हो जीते हैं, जो जीते हैं उन बेचारों को आप सामने ही नहीं आने दे रहे हो, बहरहाल मर्जी आप। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसने आज बहुत बड़ी जो है आज अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा जी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो ये प्ली डाली है कि उनको ये जो रिगिंग हुई है उसके ऊपर हियरिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ओपन हियरिंग जो है हम इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो पीटीआई के बैक लॉ मेकर्स थे उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं उसके ऊपर उनको अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी रह गई हैं, तो उस सिलसिले में ये बात की जा रही थी। उन्होंने आज कुछ जो शो कॉज नोटिसेज हैं वो भी इशू किए हैं, और ये जो लिस्ट है इसके अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल, कुनूज उल जो सादात हैं वो शामिल हैं। और इन्होंने ये उस वक्त ये अनाउंसमेंट किया है जबकि प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उन्होंने साइन करने से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की समरी आई थी टू कन्वीन अ नेशनल असेंबली सेशन उसको रिफ्यूज कर दिया था, और उन्होंने कहा था जी कि जिस वक्त तक रिजर्व सीट जो है उनको एलोकेट नहीं किया जाएगा तो ये मैं जो है कन्वीन नहीं कर सकता हूं नेशनल असेंबली का, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 21 डेज इनको ये सारी सीटें जो हैं फिल करनी हैं और उसके बाद ही ये सारा कुछ हो सकेगा। अच्छा जनाब, वीकेंड के ऊपर था शबे बरात और श्रीनगर के अंदर हालात काफी खराब रहे, उसकी वजह यह है कि यहां की जो सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है श्रीनगर के अंदर उसके अंदर आपको पता ही है कि बहुत बड़ा कांग्रेगेशनल जो वो होती हैं प्रेयर्स होती हैं, यानी कि सारे बड़े बहुत लोग यहां पे जमा होते हैं कांग्रेगेट करते हैं मस्जिद के अंदर और फिर दुआएं होती हैं और इन दुआओं को लीड करते हैं हुर्रियत चेयरमैन के मीर वाइज उमर फारूक। तो इस सबसे इनको लोगों को अंदर जाने से रोक दिया गया, मस्जिद के दरवाजे पे ताला लगाया गया और उमर फारूक साहब जो हैं उनको एक दफा फिर से हाउस अरेस्ट किया गया। मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने कहा जी कि शबे बारात पे तो हमें दुआएं मांगने दो मस्जिद के अंदर। औकाफ जामिया मस्जिद जो कि मैनेजिंग बॉडी है उन्होंने कहा जी कि ये एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है, लोग जो है अथॉरिटी से बहुत ही ज्यादा अपसेट है, ये हमारी एक सेंट्रल रिलीजियस प्लेस है और हमारे रिलीजियस ये लीडर हैं जिनको के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो ये ब्लेटेंट वायलेंस है रिलीजियस राइट्स की जिसकी की इजाजत हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने भी आज कहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 कोई भी जो बंदा किसी भी जगह पे अपनी नमाजें या अपनी इबादत करना चाहता है उसको आप रोक नहीं सकते हैं। और ये जो इस दफा मामला था ये ज्ञान वापी मस्जिद जो है वाराणसी के अंदर उसमें है जिसको के अब ये मुगल ईरा की मस्जिद है जिसको के काशी विश्वनाथ टेम्पल वाले जो है वो कहते हैं कि नहीं वो था इस जगह के, इसको ढा के इसके ऊपर जो है ये ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई है, तो इसकी बेसमेंट के अंदर हिंदू डीटीज जो है उनके आइडल्स हैं तो हमको जो है इसमें प्रेयर्स करने दी जाए। तो मस्जिद ने कहा था जी कि अगर ऊपर जो है वो मुस्लिम प्रेयर्स हैं तो नीचे हिंदू प्रेयर्स कैसे चलेंगी। बहरहाल जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऊपर आप अपनी नमाजें पढ़ें और बेसमेंट के अंदर जो है हिंदू प्रेयर्स चलती रहेंगी। तो जनाब ये भी अब मसला अब फिर एक और कट्टा खुल गया है तो अब ये हो सकता है खुदा ना करता ज्ञान वापी मस्जिद को भी शायद ढाया जाए। फार्मर्स जो हैं जी वो शंभू बॉर्डर पे हैं और उनके लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी गई हैं क्योंकि उनके लिए बड़े लंबे रूट्स बना दिए गए हैं, एक 50 किलोमीटर का डिटूर बना दिया गया है ताकि ये दिल्ली में ना पहुंच सके और चूंकि इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है इसलिए जो फार्मर्स हैं बेचारे गूगल मैप्स जो हैं वो भी यूज नहीं कर सकते। ये अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलर जो हैं बिल्कुल दिल्ली के गाजियापुर बॉर्डर पे लाना चाहते थे जैसे कि 2022 में ये लाए थे और शदीद सर्दी में भी वहां पे ये बैठे रहते थे, अपने इन्होंने सामान लाए हुए थे और मैट्रेसेस लाई हुई थी लेकिन अब ये वहां तक इनको जाने नहीं दिया जा रहा। फार्मर्स के साथ जो आज जर्नलिस्टों ने बात किया उन्होंने कहा जी कि हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपने क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कि एमएसपी कहते हैं हम सिर्फ वो चाहते हैं और वीट और राइस के लिए तो गवर्नमेंट देती है लेकिन टोमेटोज अनियंस और फ्रूट्स के लिए नहीं देती है, तो जो चीज हम 2 से 3 रुपीज पर किलो बेचते हैं वो जब हमको लेनी पड़ती है तो हम 80, 100 या 150 रुपीज पर किलो के हिसाब से लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई प्राइस फिक्स नहीं है। तो वो कहते हैं जी कि सिर्फ ये फार्मर्स का मसला नहीं है ये पूरी कौम का मसला है और हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो आपने हमसे प्रॉमिस किया था बस उस प्रॉमिस को ही फुलफिल कर दें, जो कि ये प्रॉमिस को ही फुलफिल करने को तैयार नहीं है और हम जब कहते हैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करें तो ये हमें कहते हैं तुम खालिस्तानी हो तुम टेररिस्ट हो, हमारी तरफ देखें हम क्या टेररिस्ट लगते हैं, हम फार्मर्स हैं, अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो आप घर के हेड के पास जाते हैं मसले हल करने के लिए, तो अब जो हमारी लैंड पे लड़ाई है तो हम उसके लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसी के पास यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसी के पास जाएंगे लेकिन हमें मारा पीटा जाता है, हमारे पे टीयर गैस की जाती है, हम पे गोलियां बरसाई जाती हैं, हमें एनिमी कहा जाता है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। तो आज जर्नलिस्टों से बात करते हुए जनाब इन्होंने फार्मर्स ने ये सब बातें की। आज हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अफसोस रहा क्योंकि फेमस गजल सिंगर पंकज उदास साहब जो हैं उनकी आज डेथ हुई एट द एज ऑफ 72। इनकी ये सारी डिटेल्स जो हैं इनकी बेटी ने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली और जो बाकी के भी जो इनके फैंस थे उन्होंने भी बड़े अफसोस का इजहार किया। इन्होंने बड़ी हिंदी फिल्मों के लिए गाया है और इसके अलावा इनके जो एल्बम्स हैं बड़े सक्सेसफुल मुकर्रर और तरन्नुम और महफिल इनके जो हैं और आदत जो है वो बड़े मशहूर रहे अपने जमाने में 1980s में। इन्होंने एक यूनिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग जो था उर्दू पोएट्री का वो हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। इनका बहुत ही जो फेमस सॉन्ग था चिट्ठी आई है वो तो आपको पता ही है कि जो नाम थी संजय दत्त की मूवी उससे बड़ा ये मशहूर हुआ था। ये पैदा हुए थे April 17, 1951 को और इनको पद्मश्री भी दिया गया था 2006 में। तो आज हिंदुस्तान ने इनके लॉस को अफसोस इस पे मनाया। फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी ने कहा है जी कि जो मेरी अपकमिंग फिल्म है उसके लिए मैं कोलैबोरेट कर रहा हूं एआर रहमान और जावेद अख्तर साहब के लिए। इनकी फिल्म का नाम है लाहौर 1947 और ये कह रहे हैं जी कि ये इसमें इनका रीयूनियन है आमिर खान और सनी देओल के साथ। इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और सनी देओल जो है लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सनी देओल और राजकुमार ने आपको पता ही है बड़ी गजब की जो फिल्में थी हिट्स दिए थे घायल दामनी घाटक और घाटक जो थी उसने क्लैश किया था आमिर खान की 1990 की फिल्म दिल से। फिर इसकी सनी की जो गदर थी उसने भी क्लैश किया था आमिर की लगान के साथ 2001 में। तो काफी इनका साथ साथ चलता रहा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि इसमें प्रीति जिंटा और सनी देओल का फिर से रीयूनियन होगा। इन दोनों ने काम किए हैं हीरो फर्ज और भाई जी सुपरहिट जैसी फिल्मों के अंदर। वीकेंड पे शाहिद कपूर साहब ने जी अपना 41st बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया विद क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वाइफ एंड अदर्स। और इसके जो इवेंट था इसके अंदर ईशान खट्टर और अनन्या पांडे भी नजर आए। आपको पता ही है कि इन दोनों के बारे में आजकल खबरें आ रही हैं कि ये दोनों शायद एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, तो लोग जो है वो पिक्चर्स देख के काफी एक्साइट हुए। और जनाब ऑस्ट्रेलिया ने बीट किया न्यूजीलैंड को बाय 27 रन्स इन रेन शॉर्ट एंड थर्ड T20 इन ऑकलैंड। और एज अ रिजल्ट इन्होंने सीरीज जो है वो स्वीप की है। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 118 फॉर 4 फ्रॉम 10.4 ओवर्स। न्यूजीलैंड जो है उसको आउट किया इन्होंने 98.3 ओवर्स के अंदर, पहले किया 98 रन्स पे 3 जो इनके आउट थे 98 पे, यानी कि इनको आउट कर दिया था। अब इन दोनों के बीच में टेस्ट शुरू होने वाला है, फर्स्ट टेस्ट ऑफ 2 मैच सीरीज जो है वो विलिंगटन में शुरू हो रही है थर्सडे से। साइम अयूब साहब का जो 55 बॉल 88 था और कैप्टन बाबर आजम का 36 ऑफ 48, उसने आज पेशावर जलमी को हेल्प किया विन करने के लिए लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट इन द 12th मैच ऑफ PSL। और ये मैच जो था कल का था और इसमें ये चेज कर रहे थे 212 रन्स को, कलंदर्स जो थे उनको आउट किया इन्होंने जलमी ने 203 फॉर 6। तो ये इन्होंने लूज किया मैच बाय 8 रन्स। इसी तरह आज जो मैच था जिसमें कि 5 विकेटें ली पेशावर जलमी के आरिफ याकूब ने और बीट किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाय 8 रन्स एट लाहौर कदाफी स्टेडियम। इन्होंने 5 विकेटें ली फॉर 27 रन्स। एट द स्टार्ट ऑफ 19th ओवर इस्लामाबाद को चाहिए थे 21 रन्स ऑफ 12 बॉल्स विथ 6 विकेट्स इन हैंड, लेकिन फिर भी ये अचीव अपना नहीं कर सके। जलमी के जो कैप्टन थे बाबर आजम, आज उन्होंने फिर से जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली, 100 बनाए ऑफ 59 बॉल्स। और इस तरह से ये जो हैं ये जीते हैं। इनका टारगेट जो इनको दिया गया था वो 202 था, जो कि जाहिर है कि बहुत ज्यादा था, 201 रन्स बनाए थे जलमी ने। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट कनेडियन टीनेजर 19 ईयर्स ओल्ड क्रिस्टोफर मोरेल्स विलियम्स, जिन्होंने के 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है एट SEC इंडोर चैंपियनशिप एट फेटविल आर्कनसा। और इनका जो विनिंग टाइम था 44.49 था, जो कि 0.08 सेकेंड्स फास्टर देन अमेरिकन कायरोन क्लेमेंट रिकॉर्ड जो कि उन्होंने 2005 में बनाया था उससे है। लेकिन जो 2018 में US माइकल नॉर्मन जो के भागे थे 44.52 सेकेंड्स पे, उनका फिर जो है रिकॉर्ड रेटिफाई नहीं किया गया था। डर यही है कि मोरेल्स जो है इनका भी शायद रेटिफाई नहीं किया जाएगा। अगर ना किया गया तो फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन अगर किया गया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाएंगे फिर।
बस
क्या बात है, बस पैन बाकी दिया और तुसी सुनाओ। मेरा उन्होंने मेरा प्यार नहीं है।
आपने ये एक ये न्यूज जो है कैसे छोड़
दी? बस मैंने छोड़ दिया भाई, आपके लिए छोड़ दिया, मेरा उनके
मैं
प्यार
कहता
नहीं
हूं,
है।
आपका बेस्ट दुनिया में जो आपका जो फेवरेट सॉकर प्लेयर है वो कौन है?
मेसी और रोनाल्डो। मेसी जो है बड़ा पॉपुलर हो गया यूएस के अंदर।
एम्बापे
नहीं, एम्बापे तो है ही है, वो तो यंग ब्लड है ना, लेकिन असल में तो रोनाल्डो एंड मेसी। आपको पता है कि
लेजेंड्स हो गए ना।
हाँ, यूएसए के अंदर मेसी अभी सबसे ज्यादा फेमस एथलीट है।
मगर आपका जो फेवरेट प्लेयर है
एम्बापे, यंग गन, यस
है ना, आपकी बड़ी तारीफ करती है।
ओ यस, एक्सट्रीमली रेयर टैलेंट है, रेयर टैलेंट।
अब ये कनाडा का एक जो टॉप मोस्ट टैलेंट है अल्फांसो डेविस, आपको पता है ना कि ये जो है एम्बापे जो है वो खेलता है रियल मैड्रिड के साथ, उसने एग्रीमेंट किया हुआ उसके साथ ना। अल्फांसो डेविस ने आज वर्बल एग्रीमेंट किया है टू प्ले विद रियल मैड्रिड। हालांकि अभी ये बायर्न म्यूनिख के साथ खेलता है, मगर ये कि वो जो एग्रीमेंट हो गया, हम यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में उसे ट्रेड कहते हैं, मगर वहां पर कहते हैं यूरोप में इस चीज को सॉकर में इसको कहते हैं ट्रांसफर
या
ट्रांसफर। अब ये आपस में बात कर रहे हैं कि इसको ट्रांसफर रियल मैड्रिड एंड बैर्न म्यूनिक्स जो है वो बात कर रहे हैं कि इसकी किस तरीके से इसको जो है ट्रांसफर
है, ज्यादा देने के नहीं देने।
तो अल्फांसो डेविस अगर नहीं भी हुआ तो कह रहा है 25 के बाद मैं आ जाऊंगा, एक साल ही है ना, एक साल मैंने खेलना और एग्रीमेंट का, तो एग्रीमेंट का एक साल और खेल के मैं आ जाऊंगा। कुड यू इमेजिन अल्फांसो डेविस एंड
एम्बेपे, ओहो
व्हाट अ टीम,
लेकिन एम्बेपे तो
ही इज अ कैनेडियन,
या दैट्स अ थिंग,
ही इज अ कैनेडियन. पहले कहा जाता था कि कोई भी कनाडा का कोई भी खिलाड़ी जितना भी अच्छा हो वो जी वो वहां यूरोप में जाके नहीं खेल सकता. प्रूफ कर दिया इसने अल्फांसो डेविस. वेयर टू गो अल्फांसो. ओके, मैं आम की बात नहीं कर रहा हूं,
मेक्सिको के अल्फांसो आम. वैसे क्लियर किया करें चीजों को, बिल्कुल क्लियर.
मैं एकदम कर दिया ना, मैंने
क्लियर
सीधे मैं पहले से कर दिया ना कि आम की बात नहीं कर रहा हूँ.
यस,
अल्फांसो डेविस इज नॉट अ मैंगो.
ठीक है,
ओके. ये थी हमारी आज की न्यूज, बख्या की न्यूज. इंशाल्लाह ताला कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. शारदा जी थैंक यू सो मच. एंड अब मैं ली चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद. सुनिए, एंजॉय कीजिए बख्या की बातें इंशाल्लाह ताला कल. उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज.
Thank you. रात में गोद जैसे छुप जाए मैं गोरी जैसे छुप जाए हाय किसी को क्या कहे हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए
खोए हुआ क्या खोए जा बीजियों में अरमान
सोए किसी को क्या कहे हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए चली गली गली गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली
गली गली
कली कली
गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली
आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया खिल के पास अटल के दूर से मिल के चैन आए फूल खिल के पास अटल के दूर से मिल के चैन आए और कब तक मुझे चढ़ पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुक मस्तानी कब आएगी तू बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया